अगली सूरत मोहम्मद है। जैसा कि पारे के इंट्रो में आपको बता चुकी, ये सूरत बड़ी अहम है। इसी सूरत का दूसरा नाम सूरत किताल भी है। और इस सूरत का पैगाम क्या है? नहरों की तरह के अमल करो जो बाद में भी बहते रहें। इसमें जन्नत की चार नहरों का जिक्र है, और ख़ास तौर पे इसमें आप बार बार जो चीज़ नोट करेंगे, उसको हाईलाइट भी करिएगा, वो है हब्द अमल। कि देखो, तुम्हारे आमाल ज़ाया ना हो जाएं, पकी पकाई हंडियां ना गिर जाए, खड़ी फसल ना जाया हो जाए। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और खूबी में ये भी चीज़ देखिए कि अल्लाह के नबी के नाम के साथ ये सूरत है। कुरान पाक में अम्बिया के नाम पे कितनी सूरतें अभी तक पढ़ चुके हैं? इब्राहिम, हूद, यूसुफ, यूनुस और अब सूरत मोहम्मद। और सूरत नूह पढ़ेंगे 29वें बारे में इंशाअल्लाह। अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अदल्ला अमालहुम। जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने उनके आमाल जाया कर दिए। हब्त आमाल का पहला मामला कि अल्लाह ने इनके आमाल को रायगां कर दिया। किन अमलों को अल्लाह जाया करता है? लिख लीजिए, अल्लाह ने इनकी रिवायती दीनदारी के काम जाया कर दिए। कुफारे मक्का रिवायात के नाम पर बहुत नेकियां करते थे, जिसमें हाजियों की खिदमत थी, सत्तू घोल घोल के पिलाना, काबे की खिदमत करना। अल्लाह ने उन लोगों की ये जाहरी नेकियां जाया कर दी। क्यों? कि उनके अंदर दीन की रूह नहीं थी। आज हम मुसलमानों में भी ये सोच देखते हैं, रिवायती नेकियां बहुत करेंगे, कुछ तो बहुत ही मारूफ नेकियां, खुशी खुशी करेंगे, लेकिन जो असल दीन को अपनी ज़ात पे फिट करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है, उससे रुक जाते हैं। और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया और इस चीज़ को मान लिया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और है वो सरासर हक उनके रब की तरफ से, अल्लाह ने इनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी और इनका हाल दुरुस्त कर दिया। अल्लाह हमारे साथ भी ऐसा ही कर दे। ये इसलिए कि कुफर करने वालों ने बातिल की पैरवी की और ईमान लाने वालों ने इस हक की पैरवी की जो इनके रब की तरफ से आया है। इस तरह अल्लाह लोगों को इनकी ठीक ठीक हैसियत बताए देता है। मन नुज़िल अला मोहम्मद क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं दिया गया हूँ कुरान और सुन्नत उसके साथ। तो याद रखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो दीन था वो सिर्फ कुरान नहीं था, इसके साथ आपकी सुन्नत और आपकी चीज़ों को मानना भी लाजमी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया करते थे, तो हसान बिन अतिया एक हैं, वो कहते हैं कि जिब्राइल आपके पास सुन्नत लेकर आते जैसे कुरान लेकर आते, सुन्नत सिखाते जैसे कुरान सिखाते। तो खुशी से सुन्नतों को अपनाइए, ये है असल दीनदारी। लिखिए किरदार साजी का पहला नुक्ता इसमें, सुन्नतों की पैरवी। सूरत मोहम्मद है तो क्या इसके पढ़ने के दौरान हम सुन्नतों की बात ना करें? क्या अल्लाह के नबी सल्लम की सोने की, जागने की, खाने की, पीने की सुन्नतें और इसी तरह जो आज की मतरूक सुन्नतें उसकी बात ना करें? कुरान के बाद अब सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जिस चीज़ को हमें पढ़ना चाहिए वो सीरत पढ़नी चाहिए। कितने लोगों के दिल में अब ये ख्वाहिश उठ रही है कि हमें सीरत पढ़नी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला आपको ज़रूर नसीब कराए। मुझे ऐसा लगता है कुरान एक आंख है तो सुन्नत दूसरी है। आप एक आंख बंद करें, अब मैं आपको एक आंख से देखूं, पूरा नहीं दिखता। कुरान के साथ सुन्नत को लगाएंगे और सुन्नत के लिए ऑफकोर्स सीरत ही पढ़ेंगे और हदीस पढ़ेंगे, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला ने यहाँ इस बात का भी तज़किरा कर दिया कि हमारा दीन रिवायती दीन के साथ साथ जंग के आदाब भी बताता है, इसीलिए अब अगली आयतों में कुछ इसका तज़किरा हो रहा है। फरमाया, पस इन काफिरों से जब तुम्हारी मुठभेड़ हो तो पहला काम गर्दने मारना है, यहाँ तक कि जब तुम इनको अच्छी तरह कुचल दो तब कैदियों को मजबूत बांधो। इसके बाद तुम्हें इख्तियार है कि एहसान करो या फिदिये का मामला करो, यहाँ तक कि लड़ाई अपने हथियार डाल दे। ज़ालिक वलो यशाउल्लाहु, ये है तुम्हारे करने का काम। अल्लाह चाहता तो खुद ही इनसे निमट लेता, मगर ये तरीका उसने इसलिए इख्तियार नहीं किया ताकि तुम लोगों को एक दूसरे के जरिए से आजमाए। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएंगे, अल्लाह इनके आमाल को हरगिज जाया न करेगा, वो इनकी रहनुमाई फरमाएगा, इनका हाल दुरुस्त करेगा और इनको उस जन्नत में दाखिल करेगा जिससे वो इनको वाकिफ करा चुका है। यहां भी थोड़ी सी बात करने की जरूरत है, और वो क्या है? पहले अंबिया के किस्से हमने पढ़े, उनकी कौमें आसमानी आफतों से मरवा दी गईं। जब उनमें कोई तेल नहीं निकला, जब उनमें कोई खैर नहीं थी, अल्लाह ने उन कौमों को ख़त्म करा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफीन अव्वल कुफारे मक्का थे, अल्लाह ताला ने उनको किसी आसमानी आफत में नहीं मारा। क्यों? एक तो यह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, दूसरी बात है कि इनमें अभी खैर वाले लोग मौजूद थे, क्योंकि जब आसमानी आफत आती है तो सारे मारे जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनमें से जो फितरतुस सलीमा वाले लोग थे वो मुसलमान होके आते रहे। 13 साल मक्का के जो थे उसमें पोलराइजेशन हुई और अच्छे अच्छे लोग जो थे वो इस्लाम में दाखिल हो गए। मक्का से मदीना आने के बाद 1 साल के बाद जब पहली जंग बदर की छिड़ी, उस वक्त तक आप कह लीजिए कि मक्का में जो लोग थे उनमें अक्सरियत अल्लाह के नबी की मुखालफत थी। चंद लोग थे जो वहां अपने दीन ईमान को छुपा कर बैठे हुए थे। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जंगों के जरिए से खत्म कराया। क्यों? कि सिर्फ वो लोग मारे जाएं जो वाकई मारे जाने के काबिल हैं। ये बहुत बड़ी रहमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगें इतना खूबसूरत टॉपिक है, लेकिन आज जो हम इस लफ्ज के साथ भी परेशान हो जाते हैं। और दूसरी बात, आप इसमें यह भी याद रखिए कि जो अल्लाह के दीन के दिफा के लिए निकल आता है, अल्लाह उसके हाल की इसलाह की बात करता है। ये दूसरी दफा इधर आ गया कि इनका हाल दुरुस्त करेगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे हालात को और हमारे हाल को भी दुरुस्त कर दे। हाईलाइट कीजिएगा अगली आयत को। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम मजबूत जमा देगा। रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया है तो इनके लिए हलाकत है और अल्लाह ने इनके अमाल को भटका दिया, क्योंकि उन्होंने इस चीज को नापसंद किया जिसे अल्लाह ने नाजिल किया, लिहाजा अल्लाह ने इनके अमाल जाया कर दिए। क्या वो जमीन में चले फिरे ना थे कि इन लोगों का अंजाम देखते जो इनसे पहले गुजर चुके हैं? अल्लाह ने इनका सब कुछ इन पर उलट दिया और ऐसे ही नतायज इन कुफार के लिए मुकद्दर हैं। ये इसलिए कि ईमान लाने वालों का हामी और नासिर अल्लाह है और काफिरों का हामी और नासिर कोई नहीं। ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को अल्लाह उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। यहां से भी अमल के नुक्ते निकाल लीजिए। पहली चीज आप देखिए, इन तंसुरुल्लाह यंसुर को, तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इस पे तो हम पीछे बात कर चुके हैं, आपको याद होगा। और ये अल्लाह ताला का बहुत प्यार है इंसानियत पर। हालांकि अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे, इन तंसुरुल्लाह ला यंसुर को, कौन रोके, वो तो गनी है, वो बादशाह है, लेकिन ये अल्लाह की मोहब्बत है। दूसरी बात इसमें एक और समझ आती है कि अल्लाह जिंदगी में दीन की खिदमत के मौके क्यों लाता है। नंबर एक, बंदे की हाल की इसलाह हो जाए। देखिए, आप किसी की इसलाह की कोशिश तो करें। मसलन इस वक्त मैं आपको कोई मौजू बताऊं, गीबत का टॉपिक बताऊं, मैं अकेली हूं ना और आप सुनने वाले इतने हैं। जब मैंने ये बात कहनी है ना, तो आप सब ने मेरी इसलाह करनी शुरू कर देनी है। किसी महफिल, किसी क्लोज सर्कट में अगर मुझे गीबत करते आपने देख लिया, आपने कहना सुनाए जी आप क्यों नहीं कर रही। नतीजा क्या होगा? आपको कहने वाला एक तो मुझे कहने वाले 100, ज्यादा कम, समझ रहे ना? तो मैं ज्यादा मंझूंगी कि आप? मैं ज्यादा मंझूंगी? एक बर्तन को एक हाथ पड़े या 100 हाथ लगे, कौन सा चमकेगा? ये है इसलाह का काम। आप वाकई अगर अपने अंदर कोई कमी देखें, और मुझे इसमें उनका कॉल भी याद आ रहा है, गालिबन अशरफ अली थानवी या किन का कॉल है, कोई आलिम दीन है आज के दौर के, वो कहते हैं जब मैं अपने अंदर कोई कमी देखता हूँ ना, तो मैं उस बात से दूसरों को रोकना शुरू कर देता हूँ। क्यों? कि मैं इनको कहूंगा, जवाब में ये मुझे कहेंगे कि आप तो खुद ये काम करते हैं, तो मुझे बड़ी शर्म आएगी। तो याद रखिए, दूसरों की इसलाह असल में आपकी अपनी इसलाह का जरिया बन जाती है। एक दूसरी वजह भी होती है कि अल्लाह ताला अपने दीन के काम का मौका क्यों देता है। अहले ईमान को मैदान में लाकर अल्लाह उनकी असल दीनदारी जाहिर करता है, फिर पता चलता है, वरना अल्लाह अकेला भी काम कर ले। देखिए कौन कितने पानी में है, जब आप उसको अमली तौर पर आजमाएं। बातें तो सारे बड़ी अच्छी कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी असल दीनदारी जाहिर करता है नेकी के मौके देके। अगर असल दीन होता ना, फिर बड़ा ही पनपता है, फिर फरिश्ते कहते हैं पास हो गया, आप कामयाब, कर दो कर दो। और अगर ऊपर का वनीर, अंदर का खोखलापन और कॉलो फेल और अमल में तजाद और जो कुछ है, तो फिर अल्लाह कहता है अब सुनाओ। तो लिहाजा अल्लाह से ये दुआ किया करें कि अल्लाह अगर मेरे अंदर कोई खोट खपट है ना, उसको दूर कर दे, लेकिन मुझे इस रास्ते से ना हटाना। दो ही सूरतें होती है, या बंदा अपनी वो बुरी आदत छोड़ देता है, या वो गुनाह का काम छोड़ दे, या फिर वो अल्लाह के रास्ते को छोड़ दे। फिर दूसरी बात आप देखिए, इसमें हमने पढ़ी है कि अल्लाह उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिसको वो पहचान लेंगे। हदीस में आता है कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो अपने दुनिया के घर से ज्यादा आसानी से अपने जन्नत के घर को पहचानेंगे। जरा इमेजिनेशन में लाइए, आपका जन्नत का घर कैसा होगा? कभी सोचा? अभी तो दुनिया के घर को जन्नत बनाने के ख्यालात में खोए हुए हैं। सोचा करें, बच्चों से बात किया करें, तुम्हारा बेडरूम कैसा होगा, तुम किस रंग का कमरा लोगे, तुम्हारे कर्टन कैसे होंगे। क्यों? जिस चीज का शौक आता है ना, उस चीज के लिए फिर कोशिश भी होती है। जिधर हमारे लिए चाहत होती है, फिर हम उसके ऊपर मेहनत भी करने लगते हैं। और आखिरी बात इस हिस्से में जो बड़ी अहम हमने पढ़ी है कि उनको वो नागवार लगता है जो अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुआ। लेकिन यहाँ ये हकीकत खोल के बता दी कि लोगों को क्या करना है, जो अल्लाह ने उतारा है उस पे राजी हो जाए, वरना मामला बिगड़ जाएगा। और वो कहे जालिका बेअन्नहुम करिहु मा अनज़लल्लाह, आयत 9 के अंदर हिस्सा इसको हाईलाइट करें। जो अल्लाह ने नाजिल किया ना, उसको मकरूह और उसको नापसंद नहीं करना। अपना मुहासबा करते हैं, मुझे अल्लाह का कोई हुक्म नापसंद लगता? क्या मेरे जहन में अल्लाह के दीन के मामले में कहीं ना कहीं कोई बदगुमानी तो नहीं है? तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दुनिया में भी ऐसी चीजें अल्लाह ताला हमारे सामने ले आएगा कि जिससे हम राजी हो जाएंगे। फिर इसके बाद फरमाया वल्लज़ीना कफरू यतमत्ताउन व याकुलून कमा ताकुलुल अनाम। अस्तग़फिरुल्लाह। आप देखिए कि इस आयत को पढ़कर भी अजीब सा दिल खराब होने लगता है। फरमाया और कुफर करने वाले बस दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का मजा लूट रहे हैं, जानवरों की तरह खा पी रहे हैं, और इनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम है। रह जानवरों की तरह रहे हैं, हिसाब देंगे इंसानों की तरह। ये है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ख्वाहिश, सेक्स, रोमांस, लव, कपड़े, जूते, ये जिंदगी क्या जिंदगी है कि जिसमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की फिक्र लगी रहे। और ये तो काफिरों का नाम इधर अल्लाह ने लिया, अगर मुसलमान ऐसा हो जाए तो बताइए कैसा लगेगा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमें इस हिसाब से बचाएं। तो किरदार का फिर एक और धब्बा नोट करिए, सातवां नंबर है, सिर्फ खाने पीने पहनने उड़ने को जिंदगी का मकसद बना देना। खुद से सवाल कर लेते हैं, क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना और पहनना ओढ़ना तो नहीं है? अगर ये है तो पलटने की जरूरत है। एंड अभी कितनी ही बस्तियां ऐसी गुजर गई जो तुम्हारी इस बस्ती से बहुत ज्यादा जोर आवर थी, जिसने तुम्हें निकाल दिया, इन्हें हमने इस तरह हलाक कर दिया कि कोई इनको बचाने वाला न था। भला कहीं ऐसा हो सकता है जो अपने रब की तरफ से एक साफ और सरीह हिदायत पर हो, वो इन लोगों की तरह हो जाए जिनके लिए इनका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया है और वो अपनी ख्वाहिशात के पैरों बन गए हैं। इसको हाईलाइट करें। ख्वाहिश परस्ती भी किरदार साजी के रास्ते में रुकावट है। आप खुद इसका इलाज कर सकते हैं। दिल चाह रहा है ना ठंडा पानी पीने को, थोड़ा सा कम ठंडा पिए। अभी दिल चाह रहा है, नहीं 5 मिनट बाद पीऊंगी। अपनी ख्वाहिशात पे काबू पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक दफा शुरू कर दे आसान हो जाएगा। परहेज कर लोगों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया, उसकी शान तो यह है कि इसमें नहरें बह रही होंगी निथरे हुए पानी की। पहली नहर जन्नत की पानी की, नहरें बह रही होंगी ऐसे दूध की जिसके मजे में जरा फर्क ना आया होगा। दुनिया में तो दूध की बोतल बाहर रह जाए तो चंद घंटे में स्मेल आने लगती है, फरमाया उनका तो जायका भी नहीं बदलेगा। नहरें बह रही होंगी ऐसी शराब की जो पीने वालों के लिए लजीज होगी, शराब बमानी मशरूब। नहरें बह रही होंगी साफ शफाफ शहद की, इसमें इनके लिए हर तरह के फल होंगे और इनके रब की तरफ से बख्शिश। अब सोचने का अंदाज सिखाया जा रहा है, क्या वो शख्स जिसके हिस्से में ये जन्नत आने वाली है इन लोगों की तरह हो सकता है जो जहन्नम में हमेशा रहेंगे? 3 सेकंड दें इस नुक्ते को। बराबर है ये दोनों इंजाम? और जिन्हें ऐसा गर्म पानी पिलाया जाएगा जो इनकी आंतें तक काट देगा। तो याद रखिए, दो मुख्तलिफ किरदार और दो मुख्तलिफ इंजाम। जैसा जियोगे वैसा वहां मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि जन्नत में समंदर इन चार चीजों के, जहां से नहरें बहती हैं, यानी ये जो नहरें निकलती हैं ना, पीछे इनके बड़े बड़े सोर्सेज होंगे। अब आप सोच रहे होंगे दूध की नहर हमने क्या करनी है, बच्चे तो वैसे ही नहीं पीते। ये वैसा नहीं होगा। आप देखिए कि आज दूध कितनी किस्म में हम इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट, आइसक्रीम और चीज। अब आप अपने बच्चे को कहते हैं बेटा जन्नत में जाएंगे, वहां दूध की नहर होगी, मैंने नहीं जाना। और आप इस जुमले को बदलें, हिकमत से बोलें, बेटा वहां चॉकलेट की नहर होगी, फाउंटेन ऑफ चॉकलेट, और वहां आइसक्रीम की नहरें होंगी, क्योंकि मामा जल्दी चलें, कब जाना है ना। तो बच्चों को हमेशा उनके हिसाब से रखा करें। फिर आप देखिए कि हजरत अली कहते हैं, ये दुनिया, ये क्या दुनिया है, रेशम क्या है, कीड़े का लुआब, मुंह से थूक निकलता है कीड़े के, उसको हम रेशम कहते हैं। शहद क्या है, मक्खी के पेट का बीट, शायद का प्रोसेस तो पढ़ ही चुके हैं, का तुम इनके पीछे दौड़ते हो, यानी सारी जिंदगी दुनिया दुनिया को करते हो। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया मिल भी जाए तो फिर हिसाब का फिक्र, और मोटे होने का फिक्र, और कम और ज्यादा होने का फिक्र। और यहाँ आप देखिए कि नहरों की बात पढ़ के हमेशा मेरे जहन में यही जुमला आता है कि न जाने क्या सदका जारिया के काम किए होंगे इन लोगों ने, कि अल्लाह ने वहां नहरें जारी कर दी। अपने लिए दुआ करें अल्लाह कोई ऐसी नेकी कबूल कर ले जो नहरों की तरह बहती रहे, और इमाम बुखारी के सदका जारिया की तरह हमारी कब्रों में भी कयामत तक वो अजर जाता रहे। ये जिंदगी फैसले करने का नाम है और अमल करने का नाम है। रेडी स्टडी गो, सोचते रहेंगे वक्त गुजर जाएगा, चंद दिन रह गए रमजान के। अब बड़ी बड़ी नेकियां करें, बड़ी बड़ी नीयतें करें, बड़े बड़े इरादे करें। आप देखिएगा आपका इरादा कई दूसरे लोगों की जिंदगी को बदल देगा, और आपका पीछे डालना अपनी बात को दूसरों को भी पीछे डाल देगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमारी इसलाह फरमा दे। फिर आगे कुछ किरदार जो अल्लाह के नबी की महफिलों में आते थे लेकिन दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत नहीं थी और इस्लाम की भी नहीं। वह मिन हो मैं यस्तमीउ इलैक, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं और फिर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं। तो इन लोगों से जिन्हें इल्म की नेमत बख्शी गई, नोट करें इल्म की नेमत, तो आपको इल्म एक नेमत लग रहा है ना, नेमत, सबसे बड़ी नेमत। पूछते हैं कि अभी अभी उन्होंने क्या कहा था, तो भाई तुमने खुद नहीं सुना, नहीं खुद तो उस वक्त किसी और ही सरगर्मी में मसरूफ थे। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया और ये अपनी ख्वाहिशों के पैरों बने रहे। रहे वो लोग जिन्होंने हिदायत पाई है, अल्लाह इनको और ज्यादा हिदायत देता है और इन्हें इनके हिस्से का तकवा अता फरमाता है। इसको नोट कीजिए, हिदायत वक्त के साथ बढ़ती है। जैसे हमारा वेट बढ़ जाता है ना, अगर केयरलेस होके खाते रहेंगे मोटे हो जाएंगे। नींद बढ़ जाती है, आजकल आप देख रहे हैं चंद घंटे सोते हैं, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा फ्रेश कभी नहीं होते जितने आजकल फ्रेश हैं। ताक रात में जागने के बाद अगला दिन बिल्कुल नींद नहीं आती। जो चीज आप बढ़ाएंगे वो बढ़ती जाएगी, जिसको कम करेंगे वो कम होता जाएगा। इसीलिए अल्लाह सुबहाना ताला ने यहां ये बात करके आपको मुझे इस बात का ख्याल दिलाया कि हम अपनी हिदायत के बढ़ने की दुआ करें, अपने लिए दुआ भी करें और दूसरों के लिए भी, कि अल्लाह हमारी हिदायत का सिलसिला रोकना नहीं, इसको आगे से आगे बढ़ाता रहे। पर मैं फहल यंजुरून इल्लसा, क्या अब ये लोग बस क्यामत ही के मुंतजिर हैं कि वो अचानक इन पर आ जाएं? इसकी अलामतें तो आ चुकी हैं, जब वो खुद आ जाएगी तो इनके लिए नसीहत कबूल करने का कौन सा मौका बाकी रह जाएगा। बस नबी खूब जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, और माफी मांगो अपने कसूर के लिए भी और मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी। अल्लाह तुम्हारी सरगर्मियों को खूब जानता है और तुम्हारे ठिकाने से भी वाकिफ है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, वो कह रहे थे कि कोई सूरत क्यों नहीं नाजिल की जाती जिसमें जंग का हुक्म दिया जाए, मगर जब एक पुख्ता सूरत नाजिल कर दी गई जिसमें जंग का जिक्र था, तो तुमने देखा कि जिनके दिलों में बीमारी थी वो तुम्हारी तरफ इस तरह देख रहे थे जैसे किसी पर मौत छा गई हो। अफसोस उनके हाल पर इनकी जुबान पर है इताद का इकरार और बातें हैं अच्छी अच्छी मगर जब कतई हुक्म दे दिया गया उस वक्त वो अल्लाह से अपने अहद में सच्चे निकलते तो इन्हीं के लिए अच्छा था। अल्लाह अकबर, मैं तो इसको पढ़ती हूँ तो मेरे दिल को कुछ होने लगता है। इसको कहते हैं कि वो गुफ्तार का गाजी किरदार का गाजी बन ना सका। देखिए यहाँ एक और नुक्ता नोट कर लीजिए, शायद आठवां नुक्ता बनेगा। किरदार साजी का एक नुक्ता क्या है कि जब जुबान से ये कह दिया जाए जो कहेंगे मानेंगे, तो फिर अमल में पड़े तो नाराज क्यों होते हैं? बस जब हम ना सोचे समझे बोलते हैं और जब अमली मैदान में कूदते हैं तो बिल्कुल उससे रिएक्ट उलट करते हैं। याद रखिए किसी इंसान की कामयाबी इसी बात में है कि अल्लाह के हुक्म को सुने, फिर क्या कहे, मान लिया, और कतई हुक्म दिया गया अगर सच्चे निकलते तो इनके हक में बेहतर था, खुशखबरी है। मुश्किल तो बहुत लगता है लेकिन जब बंदा जम जाता है तो अल्लाह ताला उस बंदे के लिए बड़ी खैर की बात करता है। बस आप देखिए इसको एक छोटी सी बात से समझिएगा। आप एक देखिए कि एक उस्ताद है किसी भी जगह, 50 60 100 लोग बैठे हैं, उसको पता होता है कि बैठने वालों में कौन कितने पानी में है। जहाँ बाकायदा तालीम होती है, आपको जैसे अपने बच्चों की क्वालिटीज़ का पता होता है, उनके मतलब उनके पोटेंशियल का पता होता है, इसी तरह जो मुस्तकिल उस्ताद होते हैं जहाँ वाकई तालीम होती है उनको पता होता है। अब कोई उस्ताद ये कभी नहीं कहता कि सारी क्लास फर्स्ट आए, कहता कोई? सारे ही 100% नंबर उसको पता होता है। एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा, थोड़े ही नंबरों से रह जाएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, बाकियों में से 80% पास हो जाएंगे, 20% ने फेल होना ही होना है। उस्ताद को जैसे पता होता है ना, याद रखिए अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह को मेरी आपकी सारी खूबियों, सारी हालात, सारी मजबूरियों का पता है। तकाबुल ना करें, हसद ना करें, क्या कहें, अल्लाह मेरे में जो है ना वो ले ले, जब तूने दिया ही थोड़ा है तो मैं थोड़ा ही करूंगा ना, तूने मुझे बोलना अच्छा सिखाया ही नहीं तो मैं कैसे अच्छा बोलूंगा, जब तूने मुझे कोई काम करना सिखाया ही नहीं तो मैं कैसे करूं। जैसे मैं अपने ऊपर लेती हूँ, मुझे बीसियों काम नहीं आते, बीसियों काम ऐसे मैं उंगलियों में गिन सकती हूँ, अगर किसी को मेरी खामियां चुननी है तो आ जाए अकेले में बैठ के सुनाती हूँ, नहीं आते मुझे, मैं नहीं करती, मैंने कभी उस काम में हाथ ही नहीं डाला जो मुझे आते ही नहीं करना। फिर क्यों मैं पकड़ूं और कूदूं और परेशान हो जाऊं, मैं कहती हूँ अल्लाह के मेरे में कोई खूबी है तो वो ले ले। तो हमेशा अपना पोटेंशियल पहचाने, डोंट वेस्ट योर टाइम, ये भी किरदार साजी का नुक्ता लिखे। मुझे क्या करना आता है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, आपको होता है कि एक पूरा फॉर्म होता है जिसमें 4 5 सफ़ों पे सिर्फ आपकी सेल्फ एनालिसिस होती है। किसी भी जगह जब साथी बकायदा एक लॉन्ग रन पे काम करने की नीयत करते हैं तो उनसे वो परफॉर्मा फिल कराया जाता है, क्या अच्छा लगता है, क्या खाते हैं, आप कॉन्स्टेंट हैं कि नहीं, आप लाओबाली तो नहीं है, आप बातों में तो नहीं है। वजह क्या है कि उस सारे के बाद उसको वो काम दिया जाए जिसको वो भी इंजॉय करे। बड़ी गलती होती है वो काम दे देना जो अगला कर ही नहीं सकता और आप उस पर एतराज करें। मुझे कोई हक नहीं है किसी ऐसे शख्स पे तनकीद करने का जिसको मैंने काम वो दे दिया जो वो बेचारा कर ही नहीं सकता। तो यहाँ ये अमल का नुक्ता आपके मेरे लिए मौजूद है कि अल्लाह कहता है कि तुमसे जो तवक्को की जा रही है वो यही की जा रही है कि अल्लाह ने तुम्हें क्या दिया। 5 क्लासें पढ़ाकर कोई 6ठी क्लास का टेस्ट तो नहीं ले लेता ना। तो अल्लाह ताला से ये भी अपने लिए दुआ कीजिए कि एक्सपेक्टेशंस जो अल्लाह की हमसे हैं हम उसमें पूरे उतरे। मुझे आपको अल्लाह ये नहीं कहेगा तुम इमाम काबा के दर्जे पर क्यों नहीं पहुंच गई, मुझसे आपसे नहीं पूछेगा अल्लाह ताला, आपसे मुझसे कोई बड़े बड़े सवाल नहीं पूछेगा। हाँ ये जरूर पूछेगा कि तुम अपने घर और अपने बच्चों और अपने इर्द गिर्द वालों के साथ कैसी थी। तो बस हमेशा अपनी स्किल्स पे रहें, और जब दिल खूबसूरत होता है ना तो इंसान खुशी से उस चीज़ को कबूल करता है जो उसको नहीं समझ आ रही किसी दूसरे को समझ आ गई। और दूसरी आखिरी बात करके इसको आगे चलते हैं, और वो क्या है कि अल्लाह सुबहाना ताला कभी किसी को ताना नहीं देता, किसी से कभी मायूस नहीं होता। अब अगली आयत देखिए, अगर ऐसा होता, यानी जो बात डिस्कस कर रही हैं, अगर इसका ऑपोजिट होता तो क्या होता। अब क्या तुम लोगों से इसके सिवा कुछ और तवक्को की जा सकती है कि अगर तुम उल्टे मुंह फेर गए तो जमीन में फिर फसाद बर्पा करोगे और आपस में एक दूसरे के गले काटोगे। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी जिस नबी ने इतना खून जलाया कि ताइफ तक पहुंच गया, 13 साल तुम्हारी किरदार साजियां की, अब मदीना में आ गया। असल में तो इस्लाम मदीना में अमली मैदान में कूदा था। ये सारी उन सहाबा के ऊपर बातें आ रही हैं। अब आप उसको उतना नहीं इंजॉय कर रहे जितना मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ती हूँ मेरा दिमाग वहां चला जाता है। क्या तुम अब छोटी छोटी बात पे फिर लड़ोगे, झगड़े करोगे, छोटी छोटी बात पे एक दूसरे के गले काट दोगे, लेग पुलिंग करोगे, ताकि जो कुछ आज तक दीन की खेती लगी, चलो 100 125 ही बंदा आया था हिजरत करके, लेकिन क्या अब तुम दोबारा फसाद करोगे। ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और इनको अंधा और बहरा बना दिया। अफला यतदब्बरून अल कुरान, असल ये कमी है, क्या इन लोगों ने कुरान पर गौर नहीं किया। अमला कुलूब इन अक्वालुहा, क्या इनके दिलों पर कुफल पड़े हुए, कुफल किसको कहते हैं, ताले, लॉक से इनके दिलों पे। ये आयत किरदार साजी में नौवे नुक्ते पे आती है, कुरान पाक में तदब्बुर करना। हर आयत को पढ़ते सुनते वक्त ये कहिए इसमें मेरे लिए क्या नसीहत है, मैं इससे खैर क्या ले सकती हूँ। अल्लाह ताला असल में दावत दे रहे हैं कि कुरान के लिए दिल के दरवाजे खोल दो, काब बिन मुंजर बहुत प्यारे सहाबी थे, अल्लाह के नबी ने उनकी तारीफ भी फरमाई। कहते हैं, कुरान को लाजिम पकड़ लो क्योंकि ये अक्ल की तेजी है, हिकमत की रोशनी है और इल्म का सरचश्मा है, और अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा सबसे नई और आखिरी किताब है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हम इस किताब पे गौर व फिक्र कर लें। अब देखिए तदब्बुर क्या होता है, थोड़ी सी इस पे बात करूंगी। बहुत दिन से सोच रही थी, इस आयत के इंतजार में थी, क्योंकि तदब्बुर तो आपको पूरे पारे में कराती ही रही, आयतें तदब्बुर भी देते ही रहे आपको, लेकिन असल में तदब्बुर होता क्या है। दुबुर कहते हैं पीठ को, तदब्बुर पीछे लग जाना। कुरान पाक को पढ़ने के बाद तदब्बुर का तरीका क्या होता है? सबसे पहले अपने दिल को गुनाहों से पाक करें, दूसरे दर्जे में जिंदगी को बुरे आमाल से पाक करने की कोशिश। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हमारी नाफरमानियां फहमे कुरान के रास्ते में रुकावट बनती हैं। यानी अगर कोई बात समझ नहीं आ रही ना, तो इस गांव तक कि कोई मेरी नाफरमानी है जो रुकावट बना रही है इस वक्त। फिर अगला दर्जा, दिल को बाकी चीजों से खाली करें। जिस बर्तन में पहले कुछ है और कैसे आएगा, चलिए जगह थोड़ी है तो वो दोनों मिलके वो तीसरी क्या चीज बन जाएंगी। बिल्कुल हमारे दिल का भी यही हाल है, सारी चीजों से खाली करके कुरान पढ़ेंगे तदब्बुर के दरवाजे खुलते जाएंगे। जिस दिल में दूसरी चीजें होती हैं, वो उस बंदे का दिल कुरान में नहीं लगता। आपने फरमाया कि तीन मुकामात पर अपने दिल का जायजा लो, और अगर दिल ना लगे तो अल्लाह से कल्बे सलीम मांगो। नंबर एक, तन्हाई, लोनलीनेस, फिर जिक्र की मजलिसों में और कुरान पढ़ते हुए। तो तदब्बुरुल कुरान कब होगा? जब दिल से कबाड़ खाना निकाल कर, बेकारियात निकाल कर, नफरतें कदूरतें निकाल कर, दिल को साफ करके एक आयत पढ़े, दिल पे इल्का होगी। वो एक शेर भी है ना कि जब तक तेरे दिल पे ना हो नजूल कुरान, तो तुझे वो राजी और कशाफ जैसे बड़े बड़े मुफस्सरीन से भी फायदा नहीं मिलेगा। तो उस्ताद नहीं कुछ देता, वो सिर्फ रास्ता बताता है। असल में जैसा आपका मेरा दिल होगा ना, हमें वैसे ही समझ आएगा। और याद रखिए, तरतील से पढ़ने से फहम के दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अल्लाह के घरों में जमा हो, फरिश्ते उनको ढांप लेते हैं, सकीनत उन पर नाजिल होती है, और अल्लाह उनका जिक्र आसमानों पर करते हैं। इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि कुरान पे तदब्बुर ना करना इसको छोड़ने के बराबर है, और जितना बंदा गौर व फिक्र में इजाफा करेगा उतनी ही मार्फत, यकीन और ईमान बढ़ेगा। ये किताब हकीकत में हमें हमारे हकीकी दुश्मन से भी आगाह करती है, इसलिए भी इस पे तदब्बुर करना है। और इमाम इब्ने तैमिया फरमाते हैं, जो हिदायत हासिल करने के लिए गौर व फिक्र और तदब्बुर करता है, इसके लिए हक का रास्ता जरूर वाजे हो जाता है, शरह सदर होगा, दिल रोशन हो जाएगा। इमाम सयूती हैं, कहते हैं सबसे बड़ा मकसद और अहम मुतालबा तदब्बुर है। तदब्बुर के साथ कुरान की किरत करेंगे, फहम होगा, दिल खुलेगा। और एक और मुफस्सिर हैं, कहते हैं जिसके पास ना इल्म, ना तकवा, ना फहम, वो इससे लज्जत नहीं पा सकता। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारा दिल कुरान में लग जाए। आप देखिए कि कोई शायर एक शेर एक दफ़ा पढ़ता है, जिनको मज़ा आ रहा होता है कहते हैं एक बार फिर मुकर्रर मुकर्रर। कुरान पढ़ते वक्त हमारा भी दिल यही होना चाहिए कि एक बार इस आयत को फिर पढ़ लें, एक बार फिर इस पे गौर कर लें, और अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करें। लेकिन देखिए किन के लिए ये मुश्किल है, अगली आयतों में उसका तज़किरा है। आयत 25, इन्नल्लज़ीना इरतद्दू अला अदबारिहिम मिन बादी मा तबय्यन लहुमुल हुदा। हकीकत यह है कि जो लोग हिदायत वाजे हो जाने के बाद उससे फिर गए, उनके लिए शैतान ने इस रविश को आसान बना दिया। नोट किया आपने, हिदायत वाजे हो गई फिर गए, तो शैतान ने फिरना आसान कर दिया। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे लिए शैतान का यह अमल आसान ना करे। और क्या किया, और झूठी तवक्कुआत का सिलसिला इनके लिए दराज कर रखा। और ये झूठी तवक्कुआत क्या थी, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, जन्नत मिल जानी है, आरजू में खुला दिया। पीछे आप पढ़ चुके ना, वला उमन्नी यन्नहुम वला आमुरन्नहुम, वही बात इधर आ गई, हमने पढ़ी थी सूरह निसा में वो आयतें। क्या पता चला कि शैतान जब कुरान से दूर करता है तो फिर झूठी तमन्नाओं में उलझा देता है। इसीलिए उन्होंने अल्लाह के नाजिल करता दीन को नापसंद करने वालों से कह दिया कि बस मामलात में हम तुम्हें मानेंगे, यानी पूरा नहीं मानेंगे, कुछ मानेंगे। अल्लाह इनकी ये खुफिया बातें खूब जानता है। फिर इस वक्त क्या हाल होगा जब फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज करेंगे और इनके मुंह और पीठों पर मारते हुए इन्हें ले जाएंगे। ये इसीलिए होगा कि उन्होंने इस तरीके की पैरवी की जो अल्लाह को नाराज करने वाला है और उसकी रजा का रास्ता इख्तियार करना पसंद न किया। इस बिना पर उसने इनके सारे अमाल जाया कर दिए। अस्तग़फिरुल्लाह, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस ये दुआ कर लें कि अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करे। क्या वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है ये समझे बैठे हैं कि अल्लाह इनके दिलों के खोट जाहिर नहीं करेगा? हम चाहें तो इन्हें तुमको आंखों से दिखा दें, यानी सबको पता लग जाए कि इनके दिलों में खोट है, और इनके चेहरों से तुम इनको पहचान लो, लेकिन अल्लाह नहीं करता, बोल नहीं खोलता। हम मगर इनके अंदाजे कलाम से तो तुम इनको जान ही लोगे। निफाक नहीं छुपता, मुनाफिक चिकनी चुपड़ी बातें करता है। अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता लेकिन अपने अंदाजे कलाम से तुम इनको पहचान सकते हो। अल्लाह तुम सब के अमाल से खूब वाकिफ है। हम जरूर तुम लोगों को आजमाइश में डालेंगे ताकि तुम्हारे हालात की जांच करें और देख लें कि तुम में मुजाहिद और साबित कदम कौन है। अल्लाह हमें इस आजमाइश में कामयाब करना। हम ये तो नहीं कहते ना डाले क्योंकि अल्लाह खुद कह रहा है मैं डालूंगा। तो याद रखिए, ये भी एक नुक्ता लिख लें किरदार साजी का, नवा नुक्ता है। इम्तिहान के लिए तैयार रहे, आजमाइश के लिए तैयार है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छा तालिब इल्म इम्तिहान का इंतजार कर रहा होता है, कब है टेस्ट, कब है पेपर, क्या आएगा, क्योंकि उसने तैयारी की हुई है। वो तो मुतमईन है आए टेस्ट और मेरी सच्चाई साबित और मैं अगली क्लास में जाऊं। अच्छा, इम्तिहान और आजमाइश से कौन डरता भला? जिसने पढ़ा नहीं, किताब नहीं खरीदी, वो खेल कूद में पड़ा रहा। याद रखे, दीन के रास्ते की आजमाइशें असल में खुशबख्त लोगों पे आती हैं, वो जम जाते हैं, वो तो पहले ही तैयार हैं। आप पीछे सूरह अहज़ाब में पढ़ चुके हैं, कुछ लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह कोई मौका लाए और हम अपनी मन्नतें पूरी करें। तो दीन के टेस्टों में नाकाम परेशान ना हो, अल्लाह ना करे आए आजमाइश, हमारे ईमान इस काबिल नहीं है। लेकिन जहां नफ्स पे चोट पड़े, अना पे चोट पड़े, जहां आपको लगे कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, कि अल्लाह तेरा शुक्र है आ गया इम्तिहान, मैं सब्र करूंगी, मैं इस पे राजी हूं, अल्लाह तू मेरे लिए आसान कर दे। आप देखिए, इससे अगले दर्जे पे अल्लाह पहुंचाएगा। 5-6 टेस्टों के बाद आप बिल्कुल उन सारी नेगेटिव चीजों से पाक होके अपने आप को ले जाएंगे। हमारे शैतान ने हमें नफ्स के बुत में ऐसा डाल दिया है, अच्छे भले में पता होता है कि ये बात जो मैं कर रही हूं ये मेरे नुकसान के, फिर भी करेंगे अना को तसल्ली देने के लिए। अल्लाह ताला आपको मुझे ऐसी मुश्किल से बचा दे। जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका, रसूल से झगड़ा किया, जबकि इन पर राह रास्त वाज़े हो चुकी थी, दर हकीकत वो अल्लाह का नुकसान भी नहीं कर सकते बल्कि अल्लाह ही ने इनका सब किया कराया गारत कर दिया। आपने गिना अभी तक कितनी दफा हफ्ते अमाल आया? जो मेरी मेमोरी में है, जो मैंने कभी पहले गिना था, 19 दफा था इसमें हफ्ते अमाल। आप खुद गिन के ठीक लिखिएगा, मैंने अंदाजे से बताया। तो याद रखिए कि नेकियों की ये फसल कट ना जाए, बड़ा आसान है। शैतान ऐसे हमारी नेकियां खा जाता है, हमें एहसास भी नहीं होता और हम उसके फंदे में आ चुके होते हैं। अब आखिरी हिस्सा शुरू होता है सूरत का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व ला तुबतिलू आमालकुम। फिर हफ्ते अमाल। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को बर्बाद ना कर लो, अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी ना मारो। कुफर करने वालों, राहे खुदा से रोकने वालों और मरते दम तक कुफर पर जमे रहने वालों को तो अल्लाह हरगिज माफ ना करेगा। बस क्या करो, फला तहिनू व तदू इलस्सल्म, बस तुम कमजोर ना बनो और सुलह की दरख्वास्त ना करो, तुम ही गालिब रहने वाले हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम्हारे आमाल को वो हरगिज जाया ना करेगा। रह के ये दुनिया तो इन्नमल हयात दुनिया लाइबों वलहवन, ये दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और तमाशा है। सोचिए ना, गुजर गया ना ज्यादा हिस्सा, थोड़ा रह गया। अगर तुम ईमान रखो और तकवा की रविश पर चलते रहो तो अल्लाह तुम्हारे अजर तुमको देगा। किसी को डर है कि अल्लाह मेरी कोई नेकी छुपा लेगा? अल्लाह के बारे में तुम ये सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात देखिए, फरमाया वो तुमको देगा। वला यसलकुम अमवालकुम, वो तुम्हारे माल तुमसे नहीं मांगेगा। अब बड़ी स्ट्रांग आयत है और आप फिर नोट कर लें, जहां जंग और किताल वहां माल, और जहां माल वहां दिलों का बुगस, दिलों का बुखल या दिलों का खुला होना उसकी बात है। फरमाए मैं तुमसे माल तो नहीं मांगता, और बिल फर्ज अगर कहीं वो तुम्हारे माल तुमसे मांग ले और सबके सब तुमसे तलब कर ले, सोचे क्या अल्लाह ताला को इसका हक नहीं है? जो कुछ है सब दे दो। अभी क्या कहता है अल्लाह ताला हमसे, 100 में से 2.5 2.5 दे दो कम से कम, ज्यादा वाले तो कौन है, 2.5 रख लेंगे, 97 दे देंगे क्योंकि वहां जमा हो रहा है। यहां अल्लाह कह रहे हैं अगर मैं तुमसे सारा ही मांग लूं, पहले तो कहते मैंने नहीं मांगा, फिक्र नहीं करो, तसल्ली रखो, लेकिन अगर मैं सारा मांग लूं तो क्या, तो तुम बुखल करोगे और तुम्हारे खोट उभार लाएगा, फिर वो अंदर के खोट बाहर आ जाएंगे। और याद रखिए माल के लफ्ज के साथ तो खोट जरूर ही निकलता है। वो कहते हैं ना माले मुफ्त दिले बेरहम। अल्लाह ताला ने इन आयात में सहाबाए कराम को सामने रखकर जिनसे तवक्को भी नहीं की जा सकती थी, तवक्को भी नहीं की जा सकती थी, क्यामत तक के लोगों को एक मिजाज समझा दिया कि माल का मामला दिलों में खोट ले आता है। सगे भाई दुश्मन हो जाते हैं, मिलके कारोबार शुरू किया, चला ना चला दोनों की वजह होती है, नहीं तेरी वजह से नहीं चला, तेरी नाकामी, तू ठीक नहीं चीज लाता, वो कहता तू ठीक नहीं बेचता। यानी किसी जगह ऐसे ही शराकत थी, तो मुझे किसी ने बताया कि वो जो भी दो रिलेटिव है उन्होंने की, तो अब जाहरी बात है कि चीजों सारी तो नहीं बिकती ना, तो कुछ नहीं बिकती तो सेल कम हुई। कहा नहीं ये ठीक नहीं खरीद के लाता, ये चीज बड़ी खराब खरीदता है। उसे कहा नहीं इसको बेचना नहीं आता। तीसरा कहते नहीं ये ऑर्गेनाइज नहीं ठीक करता। याद रखिए झगड़े तो होते हैं, इसलिए फरमाया करो क्या, देखो तुम लोगों को दावत दी जा रही है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करो, इस पर तुम में से कुछ लोग हैं जो बुखल कर रहे हैं, हालांकि जो बुखल करता है वो दर हकीकत अपने आप ही से बुखल करता है। अल्लाह तो गनी है, तुम ही इसके मुख्ताज हो। और आखिरी आयत वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम अल्लाह की मजबूरी नहीं हो, अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा और वो तुम जैसे ना होंगे। तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारे पर दीन के काम होने हैं, तुम्हारे माल पे नजर लगकर कुछ होगा, तुम अपना माल अपने पास रखो, तुम्हें मुबारक हो। वो जैसे हजरत सुलेमान ने मलका सबा को कहा था ना कि तुम्हारे तोहफे तुम्हें ही मुबारक, मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह ताला बखील को यही कहता है कि तुम अपनी चीजें अपने पास रखो। तो सारा खुलासा देख लीजिए एंड पे सूरत की ये आयात आपको मुझे क्या बताती हैं। वान तुमुला लौन, करो क्या फला तहिनो, सुस्ती ना करो। जो मुझे हर साल इन आयात को पढ़ के या जब भी कभी पढ़ाई है जो फीलिंग आती है वो ये है कि इस्लाम को वो किरदार मतलूब है जो अपने काम में जुता रहे। मोमिन कौन है? जो अपने काम में जुता रहे। इस्लाम गालिब हो या मगलूब, फायदा हो रहा है या नुकसान, कामयाबी हो गई या नाकामी, काम काम और काम, बेकार के तबसरे, यूजलेस टॉक्स, इफ्स एंड बट्स में पढ़ना, ये टाइम को जाया करना है। ये आप अगला नुक्ता लिख लीजिए, शायद नवा नुक्ता है। किरदार जब बनाना है तो ऐसा किरदार बनाएं जो तबसरे ना करें, अपना मुहासबा भी कर लें। मैं अल्लाह के कामों में तबसरे तो नहीं करती, वैसे मुबासे बेकार सवालात, वो बात जिसका ना दुनिया में फायदा ना आखरत में फायदा। और दूसरी बात देखिए कि ये जो जुमला अल्लाह ताला ने कहा ना कि फला तहिनु व तदउ इलस सल्म, इससे पता चलता है कि साथियों की जो सेल्फ स्ट्रीम है ना उसको कमजोर नहीं होने देना चाहिए, उनकी हिम्मत बनाए। फिर क्या हुआ, आज हुआ तो क्या हुआ, गिरते हैं शाहसवार मैदान में। अच्छा बाज दफा क्या होता है जब नाकामी होती है ना दीन के नाम पे, तो हम क्या कहते हैं, दैट्स इट, एनफ इज एनफ, आज के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी मैंने। हाँ अगर आप लोगों से मांग रही हैं तो फिर तो ना लें, लेकिन अगर आपने अल्लाह से मांगी है तो आप लेंगे। तो कभी आपके बच्चों से कोई कमी हो जाती है? अच्छा मैंने देखा अक्सर माएं कहती हैं बच्चियां काम नहीं करती। अच्छा वो करने लग जाए तो करने कौन देता है उनको, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं पकड़ते, पानी कम खोलो, साबुन ज्यादा जाया कर दिया, ये कर दिया, और चूल्हा देखो कैसे जल रहा है। वो कहती है अम्मी जी आप खुद पकाएं। मैं सच्ची बता रही हूँ, ये अल्लाह ने मोरल बुलंद किया है। गलतियां करोगे नो प्रॉब्लम, आओ तुम्हें सीने से लगाता हूं, मैंने कब कहा कि तुम अच्छे ही काम करके आओगे। तो दीन के काम करने वाले के लिए ये किरदार में नुक्ता रखिए, अपनी नाकामियों से हिम्मत नहीं हारनी। वो आपने सुना होगा कितने दफा गिरी चींटी और फिर चढ़ी, तो वो जो उस वक्त बैठा हुआ बादशाह हारा हुआ था वो फौरन खड़ा हुआ कहने लगा, ये चींटी बार बार गिर के दोबारा खड़ी होती है तो मैं शिकस्त क्यों मानूं, और जाके लड़ा और शाह सिकंदर आजम बन गया, अल्लाह ने उससे काम ले लिया। तो मेहनत पूरी कीजिए, प्लानिंग पूरी कीजिए, कोशिश पूरी कीजिए, इरादा अच्छा कीजिए, नतायज जो भी हो खुशी से कबूल करें। रदी तो बिल्लाह रब्बन। बाद दफा पूरी प्लानिंग होती है इसके बावजूद गड़बड़ हो जाती है, और बाद दफा बगैर प्लानिंग के आप कोई काम करते हैं बहुत अच्छा हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें हक के लिए लड़ने वाला बनाए, क्योंकि मोमिन हक के लिए आता है और मुनाफिक कामयाबियों के लिए आता है। ये जुमला ना भूलिए कभी, मोमिन हक के लिए आता है और हक के साथ कोई शर्त नहीं है कि वो गालिब आए, आएगा एंड पे, बीच में नहीं आता, वरना आज दुनिया का ये हाल होता। तो अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमाए। यहाँ तिलावत सुनते हैं आखिरी आयात की।
إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
تلاوت کے دوران آخری حصے پہ نظر چلی گئی اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے دھمکی دی ہے कि तुम बोन मुस्लिम अगर दीन की नशर इशात नहीं करोगे, इसको लेकर नहीं निकलोगे, अल्लाह किसी दूसरे को ले आएगा जो दीन के काम को ऑनर समझ के करेंगे। और आज ये अल्लाह की सुन्नत पूरी हो रही है। हम पैदाइशी मुसलमान तो मसरूफ़ हैं अपनी शादियों ब्याहों दुनिया घरदारी बच्चों में, और अल्लाह ने दूसरे लोगों को आगे रखा। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ने अगर मुझे अपने रास्ते में निकाला तो अल्लाह ताला मुझे ही लगाए रखे इस काम पर।